जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय गौरनिताय, गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदा देवी महारानी की, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री गौरनिथाई की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसीदेव्यै, वृंदाय तुलसीदेव्यै, प्रियायै केशवस्य च, विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा। काम्य वन का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब राधा गोविंद देव वृंदावन से निकले, आवाज आ रहा है उसका, रूप गोस्वामी के द्वारा गोविंद देव प्रकट हुए, सनातन गोस्वामी के द्वारा राधा मदन मोहन जी प्रकट हो गए, और मधु पंडित द्वारा प्रकट हो गए राधा गोपीनाथ जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा राधा रमण देव प्रकट हो गए, और जीव गोस्वामी के लिए रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर के विग्रह बनवाए और उनको भेंट में दिए। श्यामानंद गोस्वामी को राधा रानी ने स्वयं हृदय से प्रकट करके राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर दिलवाए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गोकुलानंद को प्रकट किया। और कौन बचे? सब हो गए ना। तो एक रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों भाई थे, और वो हाँ भारत की तरफ करना घूम रहा है आवाज बहुत। हाँ बस ठीक है, सबको सुनाई पड़ रहा है ना। तो जब वृंदावन में आए तो सब लोग पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, और एक दिन ऐसी कंप्लेंट आई कि एक ग्वाले की गाय रोज जाती है गाय मतलब चारा खाने के लिए, लेकिन जब लौट के आती है तो उसके थन दूध से खाली रहते हैं, बिल्कुल दूध नहीं रहता उसके अंदर। तो एक दिन वो ग्वाला जो है वो गाय के पीछे 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 आया, देखा क्या करती है गाय, दूध जाता किधर है। तो फिर उसने देखा कि एक छोटे से टील के ऊपर चढ़कर उसके अग्र भाग में गाय जाती है, अपना सारा दूध छोड़ देती और खाली थन लेकर घर पे आती। तो उसने वो गाय को ऐसे उधर ही मारना चाहा दंड के रूप में, लेकिन उन्हें बहुत लोगों ने रोका उसको। उस दिन रात को रूप गोस्वामी का निवास वही पास के पेड़ में था, उधर उस जगह पे वृंदावन में। तो उस रात को गोविंद देव स्वप्न में आए रूप गोस्वामी के। और उन्होंने बताया कि ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरा ऐसा विचार है कि उसको नीचे ही रखा जाए, तो आपको सुनाई पड़ेगा थोड़ा। आप कान को जरा तेज करके सुनना, जब तक वो इस गोल गोल जगह पर है ना, वो ऐसा ही आवाज देता रहेगा। अभी भी देखो आवाज कैसे घूम रहा है, तो वो वहां पर ऊपर चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चालू हो गया? हाँ ठीक है। तो स्वप्न में आकर उन्होंने बताया कि मैं इस टील के अंदर हूँ, मुझे आप बाहर निकालिए और मेरी पूजा आरंभ कीजिए। तो अगले दिन ब्रजवासियों को लेकर रूप गोस्वामी जी गए हैं, और उन्होंने बड़े प्रेम से हल्के हाथ से खुदाई करके राधा गोविंद जी के विग्रह प्रकट किए जो उस टील के अंदर थे। वो मूल रूप में कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ, उन्होंने उसको बनवाए थे और ब्रज में स्थापन किए थे, और कालांतर में वो लुप्त हो गए थे उस टील के अंदर। तो भगवान ने रूप गोस्वामी के लिए स्वप्न देकर उनको अपने आप को प्रकट करवाया। तो गोविंद देव जी को उन्होंने वहीं पर रखा पेड़ के नीचे और सेवा किया। तो राजा मान सिंह उनके शिष्य थे, वो उनको मिलने आए, तो उन्होंने कुछ सेवा करना चाहा। राजा मानसिंह तो अकबर के सेनापति थे ना, वो बहुत धनी थे वो। उन्होंने कहा कि आपकी सेवा में कुछ हम देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, राधा गोविंद जी पेड़ के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए मंदिर होना चाहिए। तो फिर राजा मानसिंह ने इस मंदिर को बांधा है, किधर? वृंदावन में। 7 मंजिल का मंदिर बनाया गया, 7 मंजिल का, और हर एक खंभे पर भगवान की लीलाओं को बनाया गया पत्थर में। रासलीला, माखन चोरी, जो भी लीला, रेणुकासुर वध, कंसवध, सब कुछ हर एक खंभे पर। 7 मंजिलों में जितने खंभे हैं, जितने आपको दिख रहे हैं, उसमें सब जगह पर लीला ही लीला बनाई। और 7वें मंजिल लाल रंग के पत्थर में बनाया, और 7वें मंजिल के छत के ऊपर ऐसी मशाल लगाई कि वो आगरा तक दिखाई पड़ती थी। सब सुंदर भव्य मंदिर बनाया, इतना सुंदर, मतलब आज भी वो लोग हैं ना, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग वाले लोग हैं ना, वो अभी भी जाके उसको स्टडी करते हैं, कितना सुंदर आर्किटेक्चर है उसका। तो यथावकाश रूप गोस्वामी इसको उन्होंने स्थापन किया गोविंद देव को, और रूप गोस्वामी फिर वृंदावन भ्रमण करने लगे, उनके शिष्य मंदिर संभालने लगे। वृंदावन रूप गोस्वामी जी नंदगांव में आए, टेर कदम पे उन्होंने निवास किया, वहाँ पर उन्होंने ग्रंथ लिखे जब उस मंदिर का निर्माण हो रहा था। इस तरह से बहुत लंबी कहानी है वो। रामचरित जी कुछ करना होगा आपको, ये तो बिना बोले ही आवाज आ रही है। वॉल्यूम कम करो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन औरंगजेब अपने आगरा के महल से देख रहा था, तो मुझे दूर से एक मशाल नजर आई, तो अपने सेवकों को पूछा कि क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का एक मंदिर है वृंदावन में 7 मंजिल का, उसके ऊपर ये मशाल लगाई है। तो औरंगजेब को लगा कि भला वृंदावन में हिंदुओं का कोई मंदिर या कोई बिल्डिंग जो है वो हमारे महल से ऊंची कैसे हो सकती है, जाओ उसको तोड़ दो। तो उसने आक्रमण करना का प्लानिंग किया। ये खबर वृंदावन में पहुंच गई कि अभी मुगल लोग आएंगे, और उनका एक ही काम था, वो जानबूझकर मंदिर में आकर मंदिर की मूर्ति को नष्ट करते थे सबसे पहले, बाद में मंदिर। तो फिर उस बीच में जब खबर वृंदावन में पहुंची तो सारे वैष्णवों ने अपने अपने विग्रहों को शिफ्ट कर दिया पूरा। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे उधर, जब ये मंदिर को, तो रूप गोस्वामी तो चले गए थे उस समय, रूप गोस्वामी का तो अंतर्धान हो गए थे उस समय, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस समय आचार्य थे प्रमुख, उनके निर्देशन में उनकी योजना में ये जो गोविंद देव हैं उनको शिफ्ट किया गया। और कुछ समय के बाद में जब गोविंद देव प्रकट हुए तो वृंदा देवी प्रकट हो गई उसी जगह पर। तो जब ये शिफ्ट करने का समय आया तभी वृंदा देवी भी कृष्ण भगवान के दाहिने हाथ में थी और बाएं तरफ राधा रानी का विग्रह था। इसकी बहुत लंबी कहानी है वैसे, पहले केवल गोविंद देव प्रकट हुए थे, फिर नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी ने देखा कि राधा रानी होनी चाहिए, तो उन्होंने 2 राधा रानी बनवाई और एक मदन मोहन जी के पास गई, एक गोविंद जी के पास गई। और भी लंबी लंबी कथा है, उन्होंने और भी विग्रह बनाए, फिर राधा रानी ने उनको दृष्टांत दिया। खैर कोई बात नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निर्देश में ये विग्रहों को वहाँ से शिफ्ट करना जब आरंभ हुआ तो उस समय पहले सारे विग्रह जो है वो राधा कुंड में रुके। इसलिए राधा कुंड में भी आज आप जाएंगे तो 7ों मंदिरों के वहाँ पर मंदिर हैं, 7ों देव भगवान के मंदिर हैं, गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, सब वहाँ पर हैं। यहाँ तक कि बांके बिहारी जी भी है और राधा वल्लभ जी भी है, सब हैं वहाँ पर, जितने विग्रह हैं वृंदावन में सबके मंदिर राधा कुंड में भी विराजमान हैं। और ऐसा कोई संत नहीं है वैष्णव भक्त जिसने राधा कुंड के किनारे भजन नहीं किया हो, सब प्रकार के संप्रदाय के सभी आचार्यों ने, सब संतों ने वहाँ भजन किया है। उसके बाद ये विग्रह सब वहाँ से निकले हैं और सब विग्रहों ने आकर काम्यवन में विश्राम किया है। उनका दिशा कौन सी थी, जब ये बातचीत हुई तो जयपुर के राजा ने उनको बोला कि जयपुर के राजा बहुत बड़े भक्त थे वैष्णव भक्त भगवान के, और जयपुर के राजा शूर भी थे बहुत, कहते हैं कि औरंगजेब के सैनिक और सैन्य कभी वहाँ ज़्यादा आतंक नहीं मचा पाए, इतने शूरवीर थे वो, वैष्णव भी थे और बलशाली भी थे, और औरंगजेब भी उसे थोड़े डर के रहता था। तो जयपुर के राजाओं ने बताया कि हम आपके सारे विग्रहों की रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करना, हमारे यहाँ भेज देना उनको। तो राधा कुंड होते हुए वो काम में मन में आए, यहाँ विराजमान हुए और गोविंद देव के विग्रह इस जगह पर आए। और जब यहाँ पर विश्राम करके आगे जाने का समय आया तो वृंदा देवी ने गोविंद देव से बात की कि हे गोविंद देव, आप तो जगत के नाथ हो, जहाँ भी जाएंगे आपको राजा के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मैं वृंदावन की, केवल वृंदावन की देवी हूँ, मेरा स्थान तो वृंदावन है, तो मैं यही रहना चाहती हूँ। तो वृंदा देवी जो है आपके सामने विराजमान है, यहाँ पर मूल वृंदा देवी वो यहीं विराजमान है, यहीं रह गई वो। और गोविंद देव जी आगे चले गए और जयपुर में गए। राजा ने जयपुर शहर के मध्य में ऐसा एक मंदिर बनाया, जिसको मंदिर कहना चाहिए कि शहर कहना चाहिए ये आप ही तय कर लीजिए वहाँ जाकर। उसके 7 द्वार एक दिशा में हैं, चार दिशा में सात सात द्वार हैं, कुल 28 द्वार हैं उसके, और डबल डेकर बस भी जा सकती है वो द्वार में से। उस जमाने में घोड़े हाथी रथ भी जाता था। ऐसा विशाल मंदिर बनाया है, मानो एक शहर ही है वो। उसके अंदर बस स्टैंड है, उसके अंदर रिक्शा स्टैंड है, उसके अंदर सब कुछ, लोग वहाँ पर मोटरसाइकिल साइकिल चाहे तो पैदल गाड़ी, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी बड़ी बस सब जाके अंदर घुस जाते हैं पूरे काफ़ी अंदर तक। और उसके अंदर बीच में गोविंद देव का मंदिर है। और आज तक के मेरे अनुभव में मैंने ऐसा कोई मंदिर देखा नहीं है जिसके मंगला में 2000 लोग रहते हैं 5 बजे, चाहे सर्दी हो ठंडी हो कुछ भी हो, मंगला में 2000 लोग रहते हैं, फिर दर्शन में कुछ 3000 रहते हैं, फिर दोपहर में कुछ 4000 रहते हैं, शाम को वापस 3000 लोग रहते हैं, शयन में भी रहते हैं हजारों लोग, सारे लोकल लोग हैं वो, मोटरसाइकिल साइकिल ऐसे आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन में 3 बार दर्शन करते हैं, ऐसे नहीं कि इस संप्रदाय के हैं उस संप्रदाय के, जयपुर के वासी हैं वो। तो आप सोच सकते हैं कि राजा ने कितना सुंदर संस्कृति वहां पर प्रस्थापित की होगी, कितना सुंदर कल्चर वहां पर अपने उदाहरण से अपनी प्रेरणा से अपने आयोजन से लगाया होगा कि आज भी 400-500 साल के बाद भी यही कल्चर है कि वहां पर रोज लोकल लोग अपना बस साइकिल रिक्शा जो भी है पकड़ के मंगला में जाते हैं, काम पे जाते हैं। हम एक शादी में वहां पर गए थे, तो शादी में जो चीफ कुक था ना शादी में, वो उस दिन पूरा दिन वहां पर उसका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन दिन में 3 बार मंदिर जाके आया वो। आखिरी बार मुझे भी लेके गया, चलो हम भी ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 बार जाके आए, वो रोज का मेरा नियम है। और उस शादी में मुझे भोग लगाने के लिए मेरी सेवा थी कि मैं, शादी है तो भोग लगाना चाहिए भगवान को, मैं अपने फोटो वोटो लेके गया था वहाँ सजा कर, लेकिन मैं देखा कि वो कुक ने, वो जो कैटरर था उसने अपने राधा गोविंद के फोटो को सारे भोग लगाए हुए थे पहले से ही, उसके किचन के अंदर ही राधा गोविंद जी का फोटो रखा था और सारे जितने भी बना रहा था सब भोग लग रहा था वो। मैंने केवल जाके घंटी बजाई और थोड़ा मंत्र बोले बस, लेकिन भोग तो लग गया था ऑलरेडी। मुंबई में हो सकता है क्या ऐसे? नहीं हो सकता है। जयपुर में बहुत स्ट्रांग वैष्णव कल्चर है आज भी, और वो केवल राजा की वजह से है, जिस राजा ने गोविंद देव को इस तरह से आसरा दिया। इस तरह से आसरा मतलब, आसरा कौन दे सकते हैं, हम तो आसरा लेते हैं उनका, लेकिन ऐसा स्थापना किया मंदिर का। हाँ, अपना महल जयपुर के बीच में नहीं बनाया, भगवान का मंदिर जयपुर शहर के मध्य में बनाया, चारों तरफ से सात सात गेट बनवाए। राजा कौन है? गोविंद देव राजा है, राजा का भाव था। बहुत सुंदर सुंदर कहानी है उनकी। तो जहां जहां से भी ठाकुर जी ने विश्राम किया, राधा कुंड पे, काम में वन में, तो वहां पर उनके जाने के पश्चात प्रतिभू मूर्ति को स्थापना किया गया। शास्त्र में लिखा है कि जैसे कि वो वृंदावन से निकले तो वृंदावन में भी वहां पर मूर्ति है दूसरी, राधा कुंड में बहुत विशाल सुंदर मूर्ति है, मंदिर है, इधर भी देखिए आप कितना विशाल मंदिर है, और गोविंद देव जी वहाँ विराजमान है, वहाँ तो भव्य मंदिर है पूरा। तो प्रतिभु मूर्ति और मूल मूर्ति के प्रभाव में और कृपा में कोई अंतर नहीं होता है। जिस स्थान पर भगवान पहले विराजमान थे, वहाँ से भी दूसरी जगह चले गए तो उस स्थान पर स्थापन किए गए दूसरे मूर्ति को भी उतनी शक्ति होती है, उतनी कृपा होती है उसके अंदर। तो ये जो गोविंद देव जी जयपुर में अपना काम्य वन में आकर यहाँ रुके हैं, जिस जगह पर आप बैठे हो ना, ये जगह जो है ये विष्णु के, चतुर्भुज विष्णु और उनकी पत्नी विरजा देवी, इनका विवाह स्थल है जहाँ पर आप बैठे हो। विवाह की वेदी है ये, कुछ 55 हाथ लंबा और सब कुछ उसका माप है। इस पर बिठाकर देवताओं ने चतुर्भुज विष्णु और विरजा देवी का बहुत ही भव्य विवाह किया था। उसी वेदी, मतलब उसी पे चौखट पे आप कह सकते हैं, उसी वेदी पर ये मंदिर है आज जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। क्या भाग्य है हमारा, देखो जहाँ पर विष्णु का विवाह हुआ है वहाँ पर आप बैठे हो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज विष्णु के चरण धोए, और जो चरणामृत जल है वो यहाँ पर पास में कुंड है, चरणामृत कुंड। बाबा जी कहाँ पर है वो कुंड? हाँ उधर है, उधर, हाँ उधर निवास है उनका, और आगे उधर कुंड है, उसका नाम क्या है? चरणामृत कुंड है ना, वही है वो। अच्छा, तो भगवान के चरणों को धोकर प्रक्षालन करके उस जल को वहां पर उस कुंड के रूप में आज प्रसिद्ध प्रकट है वो। फिर और एक कथा आती है यहाँ पर। एक तो पूरा आदिवारा पुराण में विष्णु जी का और विरजा देवी के विवाह का वर्णन है, पूरा बहुत भव्य विवाह हुआ और वो यही निवास करते हैं, कामयमन के स्वामी है वो, अधिष्ठात्रा देवता है भगवान। दूसरी कहानी यह है कि इसी जगह पर एक बार महाबली थे ना, महाबली जिसकी कहानी बताई हमने बीच में, महाबली भगवान के परम वैष्णव भक्त है लेकिन है तो दानव ना, दैत्य है वो, दैत्य राज। तो उन्होंने ब्राह्मणों की बहुत सेवा की, कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए, बहुत ही तेज प्राप्त किया, क्षात्र तेज, और कई बार देवताओं को पीटा उन्होंने, कई बार परास्त कराया, भगा दिया। तो ऐसे ही कई बारों में से एक बार जब देवता लोग परास्त हो गए तो इतने त्रस्त हो गए, मतलब एग्जॉस्ट हो गए, थक भी गए, मन से भी हार गए, शरीर से भी हार गए, हिम्मत हार गए, सब कुछ हो गया, हताश होकर वो विष्णु के पास में आए यहाँ पर और शरण ले ली विष्णु की, कहा कि बचाइए हमको इस दैत्य से। तो भगवान ने कहा कि आप ना गणेश भगवान का आश्रय ग्रहण करो, उनकी शरण में जाओ और उनको कहो कि आपका सेनापति बने और उनके सेनापति के रूप में आप युद्ध करो महाबली से। तो सब लोग देवता लोग गणेश जी के पास गए। गणेश जी बहुत विशेष देवता हैं, परम परम शुद्ध भक्त हैं भगवान के। वो यहाँ पर दुनिया के लिए तो विघ्नहर्ता है, बहुत सारे उनके काम हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए वो परम वैष्णव भक्त हैं, स्वयं सुंदर नृत्य करते हैं भगवान के लिए, वो बहुत शक्तिशाली हैं, चूहा वाहन है उनका, पेट बहुत बड़ा है, नाम लंबोदर पड़ा है गजानन, क्योंकि सिर उनका गज का है। ऐसे बहुत ही पवित्र और शुद्ध भक्त हैं, शंकर और पार्वती के पुत्र हैं वो, बहुत बलशाली हैं। भाई का नाम कार्तिकेय है, बड़े भाई का नाम, दोनों शंकर पार्वती के पुत्र हैं। तो वो गणेश जी के शरण में गए देवता लोग और गणेश जी फिर आयुध वगैरह लेके, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या हो, हाँ दो मिनट में। तो गणेश जी ने फिर ऐसा युद्ध किया है कि सारे दैत्यों को, यहाँ तक महाबली को भी उन्होंने परास्त कर दिया और बेहोश कर दिया सम्मोहन अस्त्र से। और जब सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कम हो गया और होश में आ गए तो डर के मारे महाबली सब लोग भाग गए। तो उस समय महाविष्णु ने प्रसन्न होकर गणेश जी को काम्यवन में चिरंतन निवास दे दिया, परमानेंट रेजिडेंस, और किसी देवता को यहाँ पर निवास नहीं, शंकर पार्वती के अलावा गणेश जी का यहाँ निवास स्थान है, वृंदा देवी के मूल विग्रह यहाँ पर विराजमान है। तो वृंदा देवी गोविंद देव का स्थान है, वृंदा देवी का स्थान है, चतुर्भुज विष्णु का विवाह स्थली है और गणेश जी का स्थान है, सब बहुत पवित्र है काम्यवन। और हमारे लिए वृंदा देवी के बारे में दो मिनट कहना जरूरी है, क्योंकि वृंदा देवी जो है वो बड़ी विशेष गोपी है भगवान की। अष्ट सखी में उनका सहभाग न होने पर भी अष्ट सखियाँ भी उनको पूछती हैं, अष्ट सखियाँ भी सारा सम्मान करती है उनकी, भगवान के सारे लीलाओं का आयोजन करती है वो, व्यवस्थापन करती है, श्रृंगार भोजन सब डेकोरेशन जितना भी है, सब कुछ जितनी भी व्यवस्था है उसका बहुत समय लगेगा आपको बताने के लिए कितना कैसी व्यवस्था करती है वो। लेकिन वृंदा देवी भगवान के सारे ब्रज की लीलाओं की आयोजक हैं, विशेष सेवा है। और हमारे लिए उनका क्या महत्व है कि वो क्या कहते हैं हम लोग, विष्णु भक्ति प्रदे देवी, कृष्ण की भक्ति देने वाली है वो। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च, केशव कृष्ण भगवान को बड़ी प्रिय है वो, और विष्णु चरण के भक्ति को प्रदान करने वाली देवी है। वृंदा देवी की कृपा से ब्रजवास प्राप्त होता है, वृंदा देवी की कृपा से भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा प्राप्त होती है, वृंदा देवी की सेवा से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए हम तुलसी का पूजा करते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं। तुलसी की प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी बहुत अद्भुत पेड़ है पूरे विश्व में, दिन को भी ऑक्सीजन रात को भी ऑक्सीजन देता है वो 24 घंटे, जैसे गाय भी है जो श्वास छोड़ती है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, ऐसे वृंदा देवी का पेड़ जो है तुलसी का वो एक ऐसा पेड़ है पूरे विश्व में जो केवल प्राणवायु देता है। तो हम लोग भी आरती करेंगे, आरती के बाद फिर थोड़ा तुलसी बारे में बताएंगे आपको। वृंदा देवी महारानी की, राधा गोविंद भगवान की।